नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, राज्यों के समावेशी और निरंतर विकास पर देश का भविष्य निर्भर करता है। उन्होंने राज्यों से एक दूसरे की सर्वोत्तम कार्यशैलियों और अनुभवों से सीखने को कहा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रत्यारोपण के लिए मानव अंगों को लाने ले जाने से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में सेना ने सहायता और राहत कार्य तेज किया। कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विदेशी प्रतिनिधियों ने भारत की कृषि क्षमता और समग्र विकास की सराहना की। आज पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन के साथ खेलेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच 3-1 दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज कोलंबो में। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। राष्ट्रपति ने कहा है कि राज्यों के समावेशी और निरंतर विकास पर ही देश का भविष्य निर्भर करता है और सभी राज्यों को एक दूसरे की सर्वोत्तम कार्यशैली और अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। राज्यपालों का 2 दिन का सम्मेलन कल राष्ट्रपति भवन में संपन्न हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मेलन में एक दूसरे के अनुभवों से सीखने की भावना से की गई व्यापक चर्चा के लिए राज्यपालों की प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि राजभवनों का माहौल भारतीय जीवन शैली के अनुरूप होना चाहिए और राज्यपालों को आम लोगों के साथ जुड़ने के प्रयासों को तेज करना चाहिए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राज्यपालों को अपने राज्य सरकार के साथ लगातार संवाद बनाए रखना चाहिए। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यपालों से अपील की कि वे राजभवनों में शासन का आदर्श मॉडल विकसित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा पर रवाना हो रही हैं। यात्रा के पहले चरण में वे आज शाम फिजी के लिए प्रस्थान करेंगी। एक रिपोर्ट।
फिजी की अपनी यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजधानी सुवा में द्विपक्षीय बैठक करेंगी। इसके बाद वे फिजी की संसद को संबोधित करेंगी। न्यूजीलैंड में श्रीमती मुर्मू द्विपक्षीय बैठक करेंगी और वेलिंगटन में एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी। वे ऑकलैंड में एक स्वागत समारोह में भारतीय प्रवासियों के साथ भी बातचीत करेंगी। यात्रा के अंतिम चरण में वे तिमोर लेस्ता जाएंगी, जहां राजधानी दिल्ली में वे द्विपक्षीय बैठक करेंगी और भारतीयों तथा फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ स्वागत समारोह में भाग लेंगी। श्रीमती मुर्मू की 3 देशों की यात्रा से भारत की एक ईस्ट नीति को और गति मिलने और दक्षिण पूर्व एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र पर भारत के विशेष फोकस की पुष्टि होने की उम्मीद है। श्री साई की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने मानव अंगों को प्रत्यारोपण के लिए सही समय पर अस्पताल पहुंचाने के प्रयोजन से मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने बताया कि इससे गुणवत्तापूर्ण तरीके से अंग प्रत्यारोपण हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अंगों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने से प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे असंख्य मरीजों की जिंदगी बचाई जा सकती है। एक रिपोर्ट।
प्रत्यारोपण के लिए अंगों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने में कई बार बहुत समय लगता है। नई मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार प्रत्यारोपण के लिए अंग ले जा रहे एयरलाइन को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जल्दी उड़ान भरने की अनुमति मिल सकती है और अंग ले जा रहे व्यक्ति को अगली पंक्ति में सीट दी जा सकती है। इसी तरह सड़क, रेल और जहाज के जरिए भी अंगों को ले जाने के मानदंड निर्धारित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह मानक संचालन प्रक्रिया नीति आयोग और प्रत्यारोपण विशेषज्ञों के परामर्श से तैयार की है। समाचार कक्ष से प्रवीण गौतम।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि असम के मुरीगांव में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने नई दिल्ली में कहा कि इससे रोजगार सृजित होंगे।
बहुत ही खुशी की बात है कि इससे असम में 27,000 करोड़ रूपये का इन्वेस्टमेंट आएगा और इससे करीब 15,000 डायरेक्ट जॉब्स और 11,000 से 13,000 इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे। सेमीकंडक्टर एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसमें केवल उसी यूनिट के जॉब्स को काउंट करना उचित नहीं होता है। जैसे सेमीकंडक्टर यूनिट आता है, उसके साथ ही साथ बहुत सारी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज भी उसके साथ ही साथ आने लगती है।
श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस संयंत्र से प्रतिदिन 4,83,00,000 चिप का निर्माण होगा। इस वर्ष 29 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम के मोरीगांव में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई के निर्माण को मंजूरी दी थी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस वर्ष जुलाई के महीने में भारतीय शेयर बाजार में 54,727 करोड़ रुपए का निवेश किया। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के अनुसार 32,364 करोड़ रुपए का निवेश इक्विटी में जबकि 22,363 करोड़ रुपए का निवेश ऋण में किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि ये निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था में अच्छी संभावनाओं, दर में कटौती और सरकार के वित्तीय अनुशासन के कारण हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विदेशी प्रतिनिधियों ने भारत की कृषि क्षमता और समग्र विकास की सराहना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 दिन के इस सम्मेलन का कल नई दिल्ली में उद्घाटन किया। इसमें 75 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बांग्लादेश की प्रतिनिधि हासमीन ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति की सराहना करते हुए कहा कि भारत कई कृषि वस्तुओं का अग्रणी उत्पादक रहा है। केन्या के प्रतिनिधि डोडो वाल ने कहा कि भारत कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है और यहां किया जा रहा शोध सराहनीय है। जापान की प्रतिनिधि सुब्रन ने विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों और उनके निर्यात में भारत की क्षमता की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों, भूख और कुपोषण की वैश्विक समस्या के निदान के लिए अपने अनुभव साझा करने को तैयार है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी अमेरिका और दक्षिण कोरिया की 12 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री रेड्डी के साथ उद्योग विभाग के अधिकारियों का एक शिष्टमंडल भी है। यात्रा का उद्देश्य राज्य में निवेश को आकर्षित करना है। उनका न्यूजर्सी, डैलस और कैलिफोर्निया दौरे का भी कार्यक्रम है। हिमाचल प्रदेश में शिमला और मंडी जिलों में बादल फटने और जमीन धंसने की घटना के बाद सेना ने सहायता और राहत कार्य तेज कर दिए हैं। बाढ़ग्रस्त रामपुर सब डिवीजन के समेज गांव में लगभग 90 लोगों का सेना के चिकित्सा शिविर में इलाज किया जा रहा है। सेना ने लोगों और आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही के लिए एक अस्थायी फुट ब्रिज भी बनाया है और पीड़ितों को भोजन और दवाई दी जा रही है। घटनास्थल के पास अवरूद्ध की मरम्मत कर दी गई है। उधर केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन के बाद सेना आज लगातार 6ठे दिन राहत और बचाव कार्य में जुटी है। कल 4 शव बरामद किए गए। सशस्त्र बलों के 1,260 से अधिक कर्मी बचाव और राहत कार्यों में जुटे हैं। मंत्रिमंडल की उप समिति ने लोगों से डार्क टूरिज्म से बचने की अपील की है। डार्क टूरिज्म आपदाग्रस्त क्षेत्रों की यात्रा को कहा जाता है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्र के बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए 137 काउंसलर तैनात किए हैं। मुंडकई और चूरलमाला में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। चालियार नदी से सटे वन क्षेत्रों और नदी के किनारे शवों की तलाश के लिए कर्मी तैनात किए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों, कोंकण और गोवा में भारी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के हिमालय से लगे क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी इलाकों में भी इस महीने की 10 तारीख तक कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। कश्मीर घाटी में श्री अमरनाथ यात्रा के दर्शन के लिए आज 1,112 यात्रियों का एक और जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। अब तक 4,90,000 से अधिक श्रद्धालु श्री अमरनाथ गुफा के दर्शन कर चुके हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज कोलंबो में होगा। ये मैच दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा। श्रृंखला का पहला मैच बराबरी पर रहा। और अब पेरिस ओलंपिक की खबरों के साथ हैं महेंद्र सिंह लालस।
महिलाओं के 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में चौथे स्थान पर रहने के बाद पेरिस ओलंपिक खेलों में तीसरा पदक जीतने का मनु भाकर का सपना अधूरा रह गया। क्या कहती हैं मनु?
इफ यू टेक इट इन अ हर्टिंग मैनर देन दिस जस्ट गिव मी यू नो मोटिवेशन टू वर्क इवन हार्डर फॉर द नेक्स्ट वन।
पुरुषों के 71 किलो भार वर्ग में बाजी में निशांत देव अपना क्वार्टर फाइनल बाउट मेक्सिको के मार्को अलोंसो वर्ल्ड अल्वारेस से 4-1 से हार गए। निशांत ने कहा,
2028 ओलंपिक में दोबारा से मेहनत करके वापस लौटेंगे।
बैडमिंटन में पुरुषों की सिंगल्स स्पर्धा में लक्ष्य सेन का मुकाबला आज दोपहर डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन से होगा। पुरुषों की गोल्फ स्पर्धा में व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले में आज गगनजीत भुल्लर और शुभंकर मिश्रा हिस्सा लेंगे। राउंड होगा चौथा। निशानेबाजी की पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा के मुकाबलों में विजय वीर सिद्धू और अनीश भानवाला आज शूटिंग रेंज में होंगे। महिलाओं की स्कीट क्वालिफिकेशन स्पर्धा में माहेश्वरी चौहान और रईसा ढिल्लो भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। पुरुष हॉकी के क्वार्टर फाइनल में भारत के सामने होगी ब्रिटेन की टीम। आकाशवाणी पर आज दोपहर 1:30 बजे इसकी कमेंट्री सुनना न भूलें। मुक्केबाजी में लोवलीना बोरगोइन महिलाओं के 75 किलो के क्वार्टर फाइनल में रिंग में उतरेंगी। सेलिंग में नेत्रा कुमानन महिलाओं की डिंगी में 7वीं और 8वीं रेस लगाएंगी। पुरुष वर्ग में विष्णु सर्वनन भी डिंगी की 7वीं और 8वीं रेस लगाने उतरेंगे। एथलेटिक्स में पुरुषों की लॉन्ग जंप में जैस्मिन एल्ड्रिन कूद लगाएंगे तो पारुल चौधरी भाग लेंगी महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ के पहले राउंड में। पेरिस से महेंद्र सिंह लालस।
आकाशवाणी दिल्ली के रंगभवन सभागार में 2 दिन के संगीत सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। कल इस सम्मेलन के पहले दिन प्रख्यात बांसुरी वादक पंडित राजेंद्र प्रसन्ना ने अपनी मनमोहक धुन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। पंडित राजेंद्र प्रसन्ना बांसुरी और शहनाई दोनों के ही अग्रणी वादक हैं और इन्हें ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कार्यक्रम में पंडित जयतीर्थ मेवुंदी ने प्रस्तुति दी जिसे वहां उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। जयतीर्थ मेवुंदी किराना घराना के शास्त्रीय गायक हैं। उनका जन्म कर्नाटक के हुबली में हुआ और पालन पोषण संगीतमय वातावरण में हुआ। आज इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट और उनके सुपुत्र पंडित सलिल भट्ट, गायक पंडित साजन मिश्रा और स्वरांश मिश्रा अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्राची प्रिया।
धन्यवाद चंद्रिका। आज प्रकाशित दैनिक ट्रिब्यून, राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण, जनसत्ता और हिंदुस्तान ने मुख्य न्यायाधीश की इस दो टूक टिप्पणी को सुर्खियों में दिया है कि अदालती प्रक्रिया अक्सर सजा बन जाती है, बचने के लिए लोग कर लेते हैं समझौता। अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा छोटे किसानों को भारत की खाद्य सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत बताने को हरिभूमि ने पहले पन्ने पर बॉक्स में दिया है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, प्रधानमंत्री बोले, कृषि की विविधता हमारे देश को विश्व की खाद्य सुरक्षा के लिए आशा की किरण बनाती है। सुप्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना यामिनी कृष्णामूर्ति के निधन की खबर उनकी विभिन्न नृत्य मुद्राओं के साथ राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रीय सहारा और कई अन्य अखबारों ने पहले पन्ने पर दी है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर अखबारों ने अपने अपने ढंग से विवेचना की है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, राज्यों के समावेशी और निरंतर विकास पर देश का भविष्य निर्भर करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रत्यारोपण के लिए मानव अंगों को लाने ले जाने से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में सेना ने सहायता और राहत कार्य तेज किया। कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विदेशी प्रतिनिधियों ने भारत की कृषि क्षमता और समग्र विकास की सराहना की। और आज पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन के साथ होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।